पहला वो वन में बिल।
आहा, कितना भयानक वन है और मैं इसमें विचरण कर रहा हूं। वन्य पशुओं का शिकार ही मेरी आजीविका है। आहा, कितना विकराल सिंह। भयंकर गर्जना सुनकर सारा वन कांप उठता है। कितने क्रूर और निर्मम परिणाम। और ये अजगर मानो साक्षात यमदूत हो। बेचारे निर्बल और मूक पशु इन क्रूर पशुओं का भोजन बनते हैं। और आज मैं भी कितना क्रूर हो गया हूँ। इस वंचर दशा में भी न जाने कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। कषायों की मंदता भी अनुभव में आती है। लेकिन मैं तो उस मंद कषायमय परिणाम में ही एकत्व का अनुभव करता हूँ। सच में मात्र मंद कषाय से क्या उपलब्धि है। आखिर तीव्रता मंदता में झूलते झूलते ये पर्याय पूर्ण हो गई।
दूसरा भव अभी केतु सेठ।
अरे, ये मैं कहाँ आ गया। किसी श्रेष्ठी का सुंदर राजमहल, माता पिता के स्नेह रस से पुष्ट होकर न जाने कब यौवन आ गया। कैसी मादकता। विषयों का रस ही आनंदमय भासित होता था। राजसी भोग भोगते हुए न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अरे, ये वज्रपात कैसा। पिताश्री का देह वियोग हो गया। अशरण संसार में कौन शरणभूत है। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात सारे परिग्रह का बोझ मुझे संभालना पड़ा और लोग मुझे सेठ कहने लगे। अभी केतु सेठ। न जाने किन संस्कारों के वश जिनेन्द्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण ये सब गुण मेरी दिनचर्या के अंग बन गए। मैं दुर्व्यसनों से बचा रहा पर मृत्यु तो आती ही है। हे भगवान, प्राण निकलते समय कैसी वेदना होती है। जैसे तैसे प्राण छूटे और।
तीसरा भव सौधर्म स्वर्ग में देव।
अरे, मैं यहां कहां आ गया और आते ही यौवन अवस्था। यहां तो रत्नों का प्रकाश है। हाँ, ये तो स्वर्ग है, मंद कषाय का फल। यहां का तो मजा ही निराला है। न भूख प्यास, न खांसी जुकाम। बस अप्सराओं के साथ घूमो फिरो और मौज करो। लेकिन दूसरे देवों का ठाट बाट तो मुझसे भी अधिक है। ये बात निरंतर कांटे जैसी चुभती है। इसलिए भोगों में भी मजा नहीं आता। और फिर इंद्र की गुलामी, निरंतर अपमान की भट्टी में जलना और विषय रस का पान करने पर भी अतृप्त तृष्णा। और अब तो ये स्वर्ग फीका लगता है। ये आभूषणों की चमक क्षीण हो रही है या नेत्रों की ज्योति क्षीण हो रही है। समझ गया, इस पर्याय का अंत निकट है। आखिर अमरों को भी मरना पड़ता है। हे प्रभु, मुझे भी मरना पड़ेगा। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगा।
चौथा भव चिंता गति विद्याधर।
अरे वाह, कितना सुंदर है ये पुष्कर द्वीप। न जाने किन परिणामों से मैं यहाँ विद्याधर होकर आया। लोग मुझे चिंता गति कहते हैं। मेरे भाई मनोगति और चपल गति मुझे कितना प्यार करते हैं। हम तीनों आकाश में उड़कर जब अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तब कितना मजा आता है। और वो प्रीतिमती सौंदर्य की प्रतिमा, लेकिन कितनी घमंडी। समुद्र के शिखर से माला फेंक कर मेरु की तीन प्रदक्षिणा देकर उसे बीच में झेलने वाले से विवाह करने की शर्त रखी। भैया मनोगति और चपल गति रीझ, परंतु शर्त में हार गए। लेकिन मैंने उसे हरा ही दिया और वो मुझसे विवाह करने को तैयार हो गई। परंतु जिस कन्या पर भाई रीझे हों उससे मैं विवाह कैसे कर सकता था? मैंने तो मना कर दिया और उसने दीक्षा ले ली। हम लोगों ने भी दीक्षा ले ली। चलो विवाह की झंझट मिटी। सम्यक्त्व के बिना संयमाचरण में कैसा लगता था?
पांचवा भाव, महेंद्र स्वर्ग में देव।
लो फिर भोगो मनोहर विषयों का सुख। ये सुंदर देवांगनाएं, मनोहर भोग सामग्री, दिव्य वस्त्राभूषण क्या ठाट बाट हैं, परंतु इनमें सुख है क्या? लगता तो सुख ही है परंतु तृप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है और भोगो और चाहिए। इस तृष्णा की ज्वाला में कैसा सुख? विचार तो सब आते हैं परंतु अभिप्राय नहीं पलटता। आखिर कभी न कभी सत्य की अनुभूति होगी। भोगों में कब समय बीत गया और आयु का अंत निकट आ गया, पता ही नहीं चला। आखिर ये क्षणभंगुर देव पर्याय नष्ट तो होना ही है।
छठवां भाव, अपराजित कुमार।
आहा, ये नगरी कितनी सुंदर है। है तो संसार में पर लोग इसे सिद्धपुर कहते हैं। पश्चिम विदेह की सीतोदान नदी के तट पर बसा ये सिद्धपुर तीर्थंकरों की विहार भूमि होने से सिद्धपुर ही है। सेठ अरहदास को पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। लोग मुझे अपराजित कहते हैं परंतु मैं मोह से तो पराजित ही हूं। चलो नाम ही सही, अपराजित होने की प्रेरणा तो मिलती है। अहो जयवंत वर्तो तीर्थंकर विमल वाहन देव, धन्य है आपकी अंतर्मुख मुद्रा और गंभीर वाणी। आहा, ये वाणी जड़ होकर भी चैतन्य का साक्षात्कार कराती है। मैं तो रंग राग से भिन्न एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञायक मात्र हूं। विकल्पों से भी पार निर्विकल्प अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। धन्य हो देव, मेरे जीवन धन तुमको पा मेरी पहली अनुभूति जगी। नई दृष्टि प्रकट हुई, सारी सृष्टि बदल गई। वाह, चैतन्य रस का स्वाद, शाश्वत सुख का प्याला, अजब निराला, देह भी पर भासित होने लगी। विषयों का रस नीरस भासित होने लगा। हे प्रभो, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। सम्यक्त्व के साथ साथ व्रति श्रावक का जीवन कितना शांत, कितना मधुर। पिताश्री भी निर्ग्रंथ हो गए। हाँ, उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया। मैं दर्शन करने पहुंच भी न सका और वे निर्वाण गमन कर गए। पितृवियोग का दुख मुझे विचलित कर रहा है। अरे, ये दो मुनिराज कौन चले आ रहे हैं? इनका दर्शन मात्र रोमांचक है। अरे हाँ, ये तो मेरे मन का भाव समझ गए। स्वयं ही कह रहे हैं कि ये मनोगति और चपल गति विद्याधर के जीव हैं। और प्रीतिमती होगी कहीं अपने को क्या? जब चित्त में ही नहीं है तो याद क्यों करना? ये मुनिराज मुझे भी निर्ग्रंथ होने की प्रेरणा दे रहे हैं। धन्य है इनकी निर्मोही करुणा। आहा, इस निर्ग्रंथ दशा में भी कितना आनंद है। चैतन्य का समुद्र परिणति में उछल पड़ता है। परिग्रह का तो सारा बोझ ही उतर गया। आहा, मैं सचमुच अपराजित हो गया, लेकिन संजुलन कसाई को पराजित न कर सका। लगता है कुछ भाव और शेष हैं, लेकिन अब मुक्ति अत्यंत निकट है।
सातवां भाव, अच्युत स्वर्ग में इंद्र।
लो फिर भोगो 22 सागरूपम तक विषयों की आकुलता। कहां वह अतिंद्री आनंदमयी निर्ग्रंथ दशा और कहां यह असंयम की ज्वाला। संयम से च्युत होकर अच्युत स्वर्ग में ये इंद्र पद मिला है। संजलन कसाय का ये दंड कितना कठोर। स्वर्ग के भोग तो निराले हैं, पर अब इनमें मजा नहीं आता। भोगों की आकुलता और चैतन्य का स्वाद, इस दुविधा में 22 सागर पूरे हो गए और अच्युत स्वर्ग से भी च्युत होना पड़ा।
आठवां भाव, हस्तिनापुर के राजा सुरूप प्रतिष्ठ।
अहो ये हस्तिनापुर नगरी मानो स्वर्ग को भी लज्जित कर रही है। पिता श्री राजा श्रीचंद ने मेरा नाम सुप्रतिष्ठ रखा, अब तो चैतन्य में प्रतिष्ठित होना है। कितनी सुहावनी चांदनी रात्रि है, निर्मल आकाश में चमकते दमकते सितारे। चैतन्य चंद्रका का प्रतीक ये निर्मल चांदनी। अरे अरे ये प्रकाश रेखा कैसी, ये तो उल्कापात लगता है। आहा ये तारा खिर गया, इस जगत में तो सब कुछ क्षणिक है, ये जीवन भी खिर जाएगा। कब तक भोगों की ज्वाला में जलूंगा। चैतन्य की निराकुल शांति के अखंड वेदन में ये राजपाट का राग बाधक लगता है। अब तो ये दृढ़ निश्चय है कि शीघ्र ही समस्त परिग्रह का त्याग करके चैतन्य की अखंड साधना करना है। वाह अतिंद्री आनंदमयी निर्ग्रंथ दशा भी अलौकिक है, प्रचुर स्वसंवेदन। ऐसा लगता है कि उपयोग स्वरूप में से बाहर ही न निकले, जरा से रागांश की जलन भी सहन नहीं होती। ये भी कर्मबंध का ही कारण है, चाहे तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों न हो, वो भी तो कर्म ही है, धर्म तो नहीं।
नौवां भाव, जयंत विमान में इंद्र।
आखिर साधना की अपूर्णता का दंड एक बार फिर मिला। जयंत विमान में मंद कषाय में ही 33 सागर तक रहना पड़ेगा। असंख्य अरब वर्षों तक का एक सागर, इतनी बड़ी असंयम दशा। वैसे इतना जरूर है कि यहाँ तत्व चर्चा के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है।
दसवां भाव, वर्तमान भाव।
और वे 33 सागर भी पूरे हो गए। 84 के चक्र में भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया। कितने बार स्वर्ग गया, अनेक बार निर्ग्रंथ दशा का अतिंद्री आनंद भोगा और स्वर्ग में जाकर फिर असंयमी हुआ। ये मनुष्य भव पाकर फिर विषयों में मोहित होकर विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझे, कहाँ गई मुक्ति की छटपटाहट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इस बंधन से मुख मोड़ लेना चाहिए। मैं तो संयम अंगीकार करूंगा। राजुल हाँ उसे थोड़ा दुख तो होगा ही, पर दुख का कारण तो मोह है, मैं मोह में क्यों फंसूं। ये जगत अनित्य है, अशरण है, संसार दुखमय है। मैं अनंत गुणों का अखंड एक पिंड पर से भिन्न चैतन्य मूर्ति हूँ। शरीर तो जड़ असुचिता का पिंड है, रागादि भाव दुख स्वरूप ही है, वीतरागी निर्मल परिणति ही सुखरूप है। शुद्धि की वृद्धि ही कर्म निर्जरा का कारण है। ये षट द्रव्यात्मक लोक अनादि निधन है। पुण्योदय से सब कुछ पाना सुलभ है, परंतु बोधि समाधि दुर्लभ है। ज्ञान स्वभाव ही मेरा धर्म है, अब तो बस ज्ञान ज्ञान में ही लीन होता है। मैं तो चला चैतन्य समुद्र में समाने, बस अब विकल्प से भी बस हो। मैं तो निर्विकल्प समाधि में लीन होता हूँ, निर्विकल्प समाधि में लीन होता हूँ, निर्विकल्प समाधि में लीन होता हूँ।